जाग रही मैं तो पिया के जगा।
Thank you so much for being on Dastan Curations with Coke Studio. I really appreciate you taking out the time. शुरुआत करते हैं इसकी आपकी थोड़ी सी स्टोरी के साथ, because you've had such a beautiful career in music, you've been acting as well, but jab aap music ke andar aayi, aapki jo evolution hai pop se leke sufi se leke classical music, how did all of this kind of happen, uske bare mein thoda sa bataye.
Iske liye koi such main aapko specifically koi waqia bataun ya koi it just you know with time and with experience with life ye sari cheeze aahista 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 add hoti chali gayi from the very beginning when I was about to record my first album usi mein ye baat kafi had tak clear ho gayi thi ki main har tarah ka gana usme gaungi aur wo luckily jo hamari puri team thi wo gana zaire unhone mera suna उनको अंदाजा हुआ तो उन्होंने हर तरह का गाना एक ही एल्बम में डाल दिया था. आपको आपको पता ही है कैसेट्स होती थी और कैसेट्स में ए और बी साइड होती थी. तो आई डिड द पॉप नंबर आल्सो, आई डिड वेस्टर्नाइज्ड नंबर्स जो वेस्टर्न मेलोडी बेस्ड नंबर्स होते हैं वो भी कर लिए, गीत भी कर लिया. हाँ उस वक्त सूफी नहीं था, उसमें कोई सूफी का टच नहीं था, उसमें गजल भी थी. उसमें फिर उसके बाद सेकंड मेरा ख्याल है जो ठुमरी रह गई थी पहली एल्बम में वो सेकंड एल्बम में ठुमरी भी आ गई. तो ये सारी चीजें मुझे शुरू से ही अंदाजा था कि बिकॉज़ यू नो व्हाट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्किल. आपके पास स्किल होती है और स्किल से अंदाजा होता है कि आर्टिस्ट कितना गाता है, कितना गा सकता है. स्किल आपका सब आपका यू नो आपका अच्छा बुरा सब बता देती है, आप कितने पानी में हैं, आपको कितना आता है.
अब
ये सो यू नो बिकॉज़ आई थिंक आई न्यू इट फ्रॉम द डे वन. ऐसी कोई वो नहीं हुई कि अच्छा जी अचानक आपको कैसे ख्याल आ गया, वो नहीं था. बिकॉज़ गले में अल्लाह ताला के का शुक्र है, बीइंग यू नो गॉड गिफ्टेड आई एम द रियल फेस ऑफ दैट रियल यू नो. आप अगर किसी को कहेंगे अच्छा जी गॉड गिफ्टेड क्या होता है तो मैं होती हूँ, वो मेरी आवाज होती है.
अल्हम्दुलिल्लाह. क्योंकि जो जब आप देखते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग एक चीज में फोकस करते हैं ना, क्योंकि इतना माशाल्लाह से इतना वर्सेटिलिटी जो आप में है वो इतनी आराम से नहीं आती लोगों में. लाइक इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू बी एबल टू प्रैक्टिस. लोग क्लासिकल म्यूजिक में चले जाते हैं, क्लासिकल म्यूजिक सीखते हैं और फिर उसकी जो टेक्निकलिटीज भी होती हैं आपको उसमें कभी कुछ कोई डिफिकल्टी या कोई अंडरस्टैंडिंग्स. और ऊपर से जब आप गाते हैं डिफरेंट किस्म के गाने भी, जब आप जैसे आप कभी गजल गाती हैं या पॉप गाती हैं या फिर सूफी कलाम गाती हैं, उसमें खुद का भी तो एक इफेक्ट आता है ना. जब जैसे आपके जो 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 गाने के मायने होते हैं, जो मेलेडी निकलती है, जो सुर निकलता है, उसमें जो इंसान को भी जो गा रहा होता है उसको भी तो एक इफेक्ट आता है. तो वो आपने चेंजेस देखी या वो उसमें आपने कुछ देखा?
ये बड़ा एक आम सा एक जुमला है, ये कहा जाता है कि आर्टिस्ट बड़ा सेंसिटिव होता है. सो मुझे ऐसे लगता है कि वो जो ये जो सारे इफेक्ट्स हैं, ये जो सारा गाना है, इस गाने की जितनी भी बारीकियां हैं वो डेफिनेटली एक आर्टिस्ट के अंदर जरूर उसका असर होता है. और आई थिंक एक आर्टिस्ट वाकई ज्यादा सेंसिटिव इसीलिए होता है कि उसके ऊपर ये बड़ी बारीक बात है. गाना एक बड़ी बड़ी बारीकी वाली बात है. मुझे जब मैं गाना गाती हूँ, अगर मैं ये कह रही हूँ एक आपसे हल्की सी, मैं आपको गाने में एक मुर्की दिखाने की कोशिश करूँ, विच कैन बी विच वन बलमा बिना ना ही चैन बल बिना नहीं चैन रे.
Beautiful.
So it's showing कि ये एक आसान बात नहीं होती. आपकी पूरी जिंदगी पे, आपके जज्बात पे, आपकी आदत पे, आपकी आपकी पूरी की पूरी लाइफ पे इफेक्ट करता है. आपके पास जो गाना होता है आपको गॉड गिफ्टेड होता है, या आप उसको सीख के जाहिर है उसको पॉलिश करते हैं. बट मैं लकी काफी इस हिसाब से भी रही हूँ कि एक तो गॉड गिफ्टेड ऑलरेडी ये दिस काइंड ऑफ मुर्की, दिस काइंड ऑफ व्हाट डू यू कॉल इट, इट्स अ काइंड ऑफ मुर्की, यू नो मुर्की जिसमें जगह जगह जब गले में आप जगह क्रिएट करते हैं तो ये इसको मुर्की कहते हैं. मुझे मैं आई वॉज रियली ब्लेस्ड विद ऑलरेडी विद दिस. When I was born, I knew that हाँ मैं गाना गाती हूँ और मैं गा सकती हूँ. मेरे फादर इतने ज्यादा कीन थे मुझे गाना गवाने के लिए because he has it also in him.
तो वो वहाँ से
I was in, हाँ जी बिल्कुल, he sings very good. He's got a beautiful voice, even बोलने में भी. So you know, उससे हुआ ये जो जहां तक मुझे आपके सवाल की समझ में आई है, मुझे यही लगता है कि आप कहते हैं कि जिंदगी पे हमारी फितरत में हमारे उस पे हमारी आवाज के क्या असरात होते हैं, ये कह रहे थे आप. इट्स दिस, मुझे लगता है कि आई एम फुल ऑफ म्यूजिक. आई नेवर न्यू दिस पहले जिंदगी में, मुझे नहीं पता था. इट्स माई पैशन, आई लव म्यूजिक, आई लव टू सिंग, आई लव टू परफॉर्म, यानी गाना मैं, और सिर्फ वो गाना मेरा ज्यादा गाना ऑडियो बेस्ड भी है. आई लाइक बीइंग एन ऑडियो पर्सन. आई प्रेफर बिकॉज वोकल कॉर्ड्स बेसिकली ऑडियो जा रही होती है सामने. तो इसका बड़ा मेजर, बहुत लंबा मेरा जवाब हो गया, मगर इसका बहुत मेजर आपके ऊपर असर होता है. हर आर्टिस्ट की आवाज उसके जिंदगी के ऊपर, उसके उसकी आदत पे, उसकी नेचर में उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है. आई एम श्योर. आई लाइक दिस क्वेश्चन, इसे मुझे पहले कभी किसी ने सवाल नहीं पूछा.
तो फरिया जी, अगर हम ये जो आपने बहुत खूबसूरत सा गाना भी जो आपने थोड़ा सा जो गाया था, ये बालमा आपने कोक स्टूडियो के लिए गाया हुआ मेरे ख्याल से. जो रिकॉर्डिंग रही उस पर थोड़ा सा बताएं कि ये हाउ वाज दिस डिफरेंट फ्रॉम द लास्ट टाइम दैट यू वर ऑन कोक स्टूडियो, जब आपने बलमा गाया, जब आपने जोगी भी गाया, और अब जाग रही, और उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, स्पेशली इन द ईयर ऑफ कोविड और जैसा पूरी जो जिंदगी दुनिया में जो हो रही है चीजें, उसके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका?
एक्सपीरियंस देखिए, दुनिया में तो जाहिर है एक इस किस्म की पेंडेमिक है जो मेरा ख्याल है कि सिर्फ एक इंसान पे, दो चार इंसानों पे तो नहीं आया, वो तो पूरी दुनिया पे आया. मुझे ऐसा लगता है कि इन दिनों में, इस एक साल में मुझे अपने आप को बहुत ज्यादा डिस्कवर करने का मौका मिला. मुझे अपने साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला जो मुझे सारी जिंदगी कभी नहीं मिला था. उससे मैंने बहुत सारी बातें लर्न की. अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी ब्लेस्ड हूँ, अल्लाह का बड़ा एहसान है मुझ पे कि हम लोग माशाल्लाह, एक तो ऑफ कोर्स इट्स एजुकेशन आल्सो, इट्स योर यू नो आपकी ट्रेनिंग, आपके माँ बाप की तरबियत, आपकी तालीम, और शुक्र है आई एम अ गुड लर्नर आल्सो. सो इस पूरे वक्त ने मुझे, मेरे लिए बड़ा, इट वॉज अ वेरी पॉजिटिव यू नो टाइम कह लें, पॉजिटिव वक्त था कहना नहीं चाहिए. हो सकता है बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स आई इस इन वक्तों में, जाहिर है बहुत सारे मसाइल पैदा हुए, मगर एक कई देखिए कई चीज़ों के बुरे पहलू होते हैं और कई चीज़ों के कईयों के लिए अच्छे पहलू भी होते हैं. हम जिंदगी में कभी सोचा था हमने कि हम ऑनलाइन इस तरह से इतना कुछ करने लग जाएंगे? मैं तो बिल्कुल एक ऑनलाइन पर्सन नहीं थी, नेवर इन माई लाइफ. आई एम अ वेरी रियल एंड ट्रू पर्सन. मेरे से नहीं होते ये शश के ऑनलाइन वाले और ये वो कोई चीज खरीदनी भी हो तो मुझे होता है यार नहीं, जब तक मैं सामने नहीं देखूंगी ना वो बात नहीं बनेगी. तो इसलिए दूसरा ये है कि कोक स्टूडियो का आपने मुझसे पूछा, वो डिफरेंट लास्ट टाइम जाहिर था. मेरे लिए दोनों दफा में कोई खास फर्क नहीं था. वो जरूर है एक थोड़ी सी, एक थोड़ा सा फासला जरूर हो गया है, मगर फिर भी लकीली वो जो बहुत ज्यादा पीक टाइम आया था बीच में इसका कोरोना का, उसकी वजह से उसके बाद अब पहले भी उसमें नहीं था और अब भी हम थोड़े से कम वाले उसमें आए हुए थे
जी.
एकदम से वो नहीं था, जाहिर है but it was an album ki shakal. This time it's an album ki shakal in which we just have one set. Everybody is coming, in front of the mic and in front of Rohilji, and they're singing, they're performing whatever they have in them. Of course, इससे पहले हम rehearsal हो चुकी थी. इससे पहले हम सारा काम करते हैं. Rohilji को तकरीबन 4 माह पहले से काम शुरू कर देते हैं.
Wow.
Coke studio पे. और उससे बहुत पहले से वो ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, मगर जब फॉर्मेलिटी आती है, फिर उसकी कहानी आती है, अच्छा जी अब आपने क्या करना है, अच्छा जी ये सुना दें, चलो वो देखते हैं, इसका इस तरह से शक्ल देखते हैं. फिर माशाल्लाह द वे ही डिस्कसेस अबाउट अ लॉट ऑफ टॉपिक्स, वो दैट्स एन अमेजिंग टाइम. आई रियली एंजॉय दैट टाइम अ लॉट. उसके अलावा इस दफा का बेसिकली एल्बम का की शक्ल थी, और मैं इस तरह ही की बिल्कुल एक शक्ल सीजन 6 में कर चुकी हूँ. सीजन 6 में हमने बिल्कुल इसी तरह से एक रिकॉर्डिंग की थी. सीजन 6 जिसमें मेरा जोगी आया था, वो बिल्कुल वही था. अब आप समझे कि मुझे मेरे लिए कोई नई बात नहीं, क्योंकि मैं सीजन 6 में ऐसी ऑनलाइन हम लोगों ने रोहिल जी ने टर्की से म्यूजिशियन से प्ले करवाया था, एंड दे आर प्लेइंग इन माय जोगी. जो कवाली मैंने की थी नुसरत फतेह अली खान साहब, और वही मेरा पहला सूफी एक्सपीरियंस भी था, सूफी कलाम का, क्योंकि आई हैव बीन लिसनिंग टू दिस कवाली थिंग सिंस माय चाइल्डहुड. माय मदर यूज्ड टू लव कवालीज, और मुझे इतना ज्यादा मुझे पता था, मुझे लगता था मैं तो बहुत सुनी भी है बचपन से, तो इट वॉज देयर मेरे रग रग में. सो वो भी उस वक्त वो एक्सपीरियंस हुआ, उस ज्यादा प्रोमिनेंट एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का सूफीज्म के लिए के हवाले से वो था.
बहुत खुश.
सो हाँ जी, अमेजिंग. देखिए, एक होता है आपको, आप किसी काम को करने जाते हैं और वो बस ऐसे होता है, हाँ काम करने जा रहे हैं. एक होता है जो आपका फेवरेट काम होता है
दिल से,
तो आपका पसंदीदा काम जब आप करने जाते हैं, वो एक एंटायरली डिफरेंट एक्सपीरियंस है. I won't be able to explain more than this, but is the fact that experience mere liye koi naya experience nahi tha, because I've already gone through this. Or last time ye tha ki maine Thumri ko perform kiya aur bada khul ke perform kiya, mujhe koi usme wo nahi thi ki acha bandhna hai, yahan bandhna hai, yahan rukna hai, yahan nahi. Unhone mujhe free hand diya hua tha ki jahan marzi gaana hai, jaise marzi gaana, ab gaaye bas.
Priya ji, aapne bahut khoobsurat baat kari hai, aur aapne jo mention kiya Thumri, मुझे इतना थुमरी के बारे में पता नहीं है, तो अगर आप इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दें कि थुमरी एग्जैक्टली होती क्या है.
थुमरी की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं. थोड़ा सा तो इससे जाहिर है, वो कहीं ये भी लिखा हुआ था कि ठुमकने से भी इसका ताल्लुक है. बेसिकली हम लोग जो राग गाते हैं या हम क्लासिकल अस्थाई यंत्र गाते हैं, उसमें कुछ बंदिश होती है कि हम बंधना पड़ता है हमें, हम राग से बाहर नहीं जा सकते. हम एक हर राग में कुछ स्पेसिफिक सुर होते हैं, उनसे बाहर आप नहीं जा सकते. ठुमरी का ऑप्शन, ये अच्छाई ये है कि ठुमरी में आप यू कैन प्ले अराउंड, यू नो यू कैन यूज. एक राग में रहने की जरूरत नहीं है, आप फ्लो में कहीं से कहीं जा सकते हैं. ठुमरी थोड़ी चुलबुली भी होती है
जी.
और इसका बेसिकली टेक्निकली यही मतलब है. इसमें मेरा ख्याल है कि इसमें आपके पास ज्यादा घूमने का, रागों में सुरों में, सुरों के साथ प्ले करने का मार्जिन होता है इसमें आपके.
जबरदस्त. तो अगर
इट इज अ फॉर्म ऑफ क्लासिकल म्यूजिक.
गॉट इट. और जाग रही इज अ थुमरी इन राग दिस, करेक्ट?
राइट, इट इज. हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल इट इज इन राग दिस. और उसमें फिर जाहिर है मैंने थोड़ा सा वो तुफैल नियाज़ी साहब से मेरी बड़ी बहुत ज्यादा रियली रिस्पेक्ट है. मैंने हालांकि जिंदगी में उनको कभी नहीं देखा, ना ही मैं उनसे कभी मिली, मगर उनका एक हल्का सा टच था जो वो देश में एक अपना उनका एक गाना है देश का, उसमें वो राग भैरों में एक चक्कर लगा के आते हैं. तो वो मेरी इंस्पिरेशन थी, तो आई जस्ट डिड इट, आई जस्ट लव्ड इट.
आई लव द सॉन्ग, इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. और जब आप उसको सुनते हैं, एक there's a calmness and there's ek soulful si feeling aati hai wo gana sunke. Aur phir jab aap lyrics bhi sunte hain to khoobsurat tareen lyrics hain, and I keep saying this on every interview, lekin I absolutely love ke Coke Studio lyrics likhte hain English mein bhi, जिनको उर्दू नहीं आती है, जिनको कभी समझ नहीं आती, तो वो भी देख के दे कैन डेल्व डीपर इनटू द सॉन्ग. एंड आई थिंक इट्स सच अ ब्यूटीफुल, इतना बहुत खूबसूरत गाना था. सो आई लव टू काइंड ऑफ हियर कि जागरही का कॉन्सेप्ट जब आपने डिसाइड किया कि आपने यही गाना है, हाउ डिड दैट काइंड ऑफ कम अबाउट? और उसमें जो फीलिंग्स आपने जो बात करी हुई थी इश्क मजाजी की और इश्क हकीकी की, उस पर थोड़ा सा टच अपॉन करें तो.
जाग रही एक क्योंकि ठुमरी है और उसके उसके बोल भी बड़े मजेदार हैं. बोल इसके बड़े उसके बोलों में कुछ मुझे आज तक जब मैं पहले गाती थी आई रिलीज इट इन 97
जी
उस वक्त तो आप समझे कि उसके बोलों में सिर्फ मुझे जिंदगी में कभी इश्क हकीकी नजर नहीं आया. इश्क हकीकी देखने के लिए भी आपका आपकी एक उम्र होती है, फेज होता है आपकी पर्सनालिटी में जो जिंदगी में इतनी मेजर चेंजेस आ चुकी होती हैं, फिर आपको वो सुरों में वो चीजें और बोलों में वो चीजें नजर आने लगती हैं. सो नाउ बिकॉज आई व्हेन आई एम सिंगिंग आई एम ओनली फोकसिंग ऑन माय वॉइस, आई एम ओनली फोकसिंग ऑन द ऑडियो, ऑन द सॉन्ग, ऑन द ब्यूटी ऑफ इट, ऑफ द ब्यूटी ऑफ द मेलोडी एंड द लिरिक्स एंड यू नो आई मीन बड़ा एक मिक्स सा कुछ मेरी फीलिंग है. और मैं फिर भी क्योंकि जब मैं गा रही थी तो मेरा ध्यान अब पता नहीं कहाँ होता है, मुझे भी अंदाजा नहीं होता. मगर लिरिक्स मुझे इसके हमेशा से बड़े लगे हैं कि जैसे किसी की याद में ऑफ कोर्स गा रहे हैं, यू नो, जुदाई में. राह तकत दिन डूब गया लाए ना पंछी तोरा पता, देख पिया मोहे भूल ना जाना, जाग रही मैं तो पिया के जगाए, जाग रही मैं तो पिया के जगाए. जाग रही मैं तो पिया के जगाए, जाग रही मैं तो पिया के जगाए. इन नैनन में नींद कहाँ रे, इन नैनन में नींद कहाँ.
बहुत खूबसूरत.
हाँ, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स अ ब्यूटीफुल मेलोडी. मुजाहिद हुसैन साहब की मेलोडी है ये. और जब शुरू में हम इस पे काम कर रहे थे तो मुजाहिद साहब को बहुत ज्यादा माशाल्लाह, ही इज अ वेरी वेरी टैलेंटेड कंपोजर एंड माशाल्लाह ही नोज हिज जॉब. He beautifully made this melody.
It's incredible to see, you know, so many people come together and people like artists like yourselves working on these things. And क्योंकि इन चीजों से खुशियाँ, इन चीजों से ख्याल जो आ जाते हैं, क्योंकि जैसा साल गुजरा है, you know, in this uncertainty, in not knowing, और जो आपने बहुत खूबसूरत बात करी कि with the perception of, you know, how you look at it, basically, कि आप कैसे देखना चाहेंगे कि कैसा साल गुजरा है. फॉर मी
जी
लुकिंग एट कोक स्टूडियो भी, कि कोक स्टूडियो भी शायद नहीं होना था, लेकिन रोहेल, यू नो, मेड इट वर्क एंड अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ऑफ यू गाइस काइंड ऑफ केम टुगेदर एंड दिस ब्यूटीफुल थिंग काइंड ऑफ केम आउट. इट मेक्स मी सो हैप्पी टू सी जो रेजिलियंस होती है लोगों की, पाकिस्तानियों की, पूरी पूरी दुनिया में सब लोगों की, दैट आर एबल टू कम टुगेदर एंड क्रिएट
जी
समथिंग सो ब्यूटिफुल जो सब लोग को एक साथ इकट्ठा लाती हैं और मेक्स यू थिंक अगेन एंड मेक्स यू लुक एट द पॉजिटिव एंड मेक्स यू लुक फॉरवर्ड के, यू नो, ये ठीक है जो दुनिया में हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन हम ठीक होंगे, आगे बढ़
जी
सकेंगे.
बिकॉज मैं आजकल काफी ज्यादा आई हैव बीन वेरी बिकम वेरी सिलेक्टिव फ्रॉम म्यूजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम गाना पॉइंट ऑफ व्यू. मगर आई एम मोस्टली नाउ आई एम ओनली, आप समझे, 3-4 साल से आई थिंक आई एम ओनली डूइंग कोक स्टूडियो एंड दैट्स इट. और कोक स्टूडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें एक आर्टिस्ट को वो बहुत सारी ऐसी चीजें जो कभी भी नहीं मिली होती, शायद हमें पूरे पूरे करियर में कभी नहीं मिली, वो सारी चीजें हैं आर्टिस्ट को मिलती हैं, यू नो वी बीन वेरी लकी माशाल्लाह।
आखिरी सवाल वुड बी कि आपकी पाकिस्तान की कौन सी सबसे खूबसूरत यादें हैं जो आपको बचपन की याद दिला देती हैं, या फिर अगर आप कहीं ट्रैवल करी होती हैं और आपको अचानक से जो ना ख्याल आ जाता है पाकिस्तान का, व्हाट आर सम ऑफ दोस मेमोरीज दैट यू हैव?
बहुत सारी बातें हैं। पाकिस्तान का ख्याल मुझे सबसे पहले मेरे करियर में या मेरी लाइफ में सबसे पहले तब आया जब मैं अमेरिका पहली दफा परफॉर्म करने गई। सब लोग ऐसे मिल रहे थे और ऐसे मेरे कपड़े तक, खवातीन मेरे कपड़े तक देख रही थी कि कहाँ से बनाया है, ये पाकिस्तान का है, उफ पाकिस्तान कैसा है, हम बड़े दूर हैं पाकिस्तान से। वो जो उन लोगों में पाकिस्तान के लिए तड़प मैंने देखी परदेसियों में, उस दिन मुझे एहसास हुआ अपने मुल्क का, उस दिन मुझे एहसास हुआ अपनी अपनी एक आजाद मुमलिकत, एक ऐसा मुल्क जिस जो हमारी पहचान है, जिसकी वजह से मैं हूँ। उसके अलावा मेरे वालिद इज फ्रॉम बटाला, ही माइग्रेटेड जब पाकिस्तान बना, सो जो जो बातें वो बताते हैं, जो जो माहौल उन्होंने खींचा, उससे भी मुझे बहुत अंदाजा हुआ कि क्या क्या कदर होती होगी, क्या चीज होती होगी अपना मुल्क in that situation. Pakistan meri pehchan hai, main duniya mein jahan bhi jaun, main jo bhi karu, main I am from Pakistan. Kariya Pervez is a Pakistani. Har jagah likhna padta hai hame, har jagah hum likhte hain, so meri mujhe to bahut zyada mohabbat hai apne mulk se.
Priya, thank you so much for taking out the time.
Thank you so much, bahut shukriya.
Main to piya ke jagah.